हम प्रेरित काम की पुस्तक में चल रहे हैं। अगर सच पूछा जाए, अगर हम ये कहें ये प्रेरित काम की पुस्तक जो है, जो हम कहते हैं प्रेरित काम की पुस्तक नहीं है, हम प्रेरित काम की पुस्तक बोलते हैं, लेकिन वास्तविक से अगर ये कहा जाए तो वो भी गलत नहीं है। पवित्र आत्मा के कार्य जो प्रेरितों के द्वारा किए गए उसकी पुस्तक है। पवित्र आत्मा के कार्य जो प्रेरितों के द्वारा किए गए उसकी पुस्तक है। इसमें पूरे प्रेरित काम में वर्णन जो है, किस प्रकार से परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपने लोगों को, अपने सेवकों को इस्तेमाल कर रहा है और अपने सुसमाचार का विस्तार करा रहा है। उसकी इसी बात ये योजना थी, क्योंकि उसने इस संसार में जाने से पहले अपने शिष्यों को से एक प्रतिज्ञा की थी या एक निर्देश दिया था, जाओ जगत के सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और देखो जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती उसका 28 अध्याय 18-19-20 पद इस पर प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए निर्देश थे या आदेश थे। और उसी को फिर प्रेरित काम की पुस्तक में हम देखते हैं, पहले अध्याय उसके 8 अध्याय में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम यहूदिया सामरिया और दुनिया के छोर छोर तक मेरे गवाह होगे। अब परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को डेल दिया, पवित्र आत्मा डेल दिया। अब वो पवित्र आत्मा द्वारा किस प्रकार से कार्य कर रहा है और वही सब कार्यों का वर्णन प्रेरित काम की पुस्तक में है। तो हम 20वें अध्याय के पिछले बार देख रहे, तो पहले पद से लेकर 12 पद तक हमने तीन मुख्य बातों को देखा था। पहले पद से लेकर 12 पद तक हम तीन मुख्य बातों को देखा था। पहला हमने देखा था कि किस प्रकार से मैसेडोनिया में और यूनान में पौलुस है और किस रीति से वहां उसके साथ एक समूह है और लोग उसके विरोध में यद्यपि षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन किस रीति से वो अपने कार्य को आगे बढ़ाता जा रहा है। तब उसके बाद वो 7 दिन वहां रहता है और वहां रहकर वो सुसमाचार प्रचार करता है और परमेश्वर के भवन में जाता है। सप्ताह के पहले दिन 7वें पद में वो रोटी तोड़ता, प्रभु भोज का वर्णन है, प्रभु भोज में वो इकट्ठा होते हैं। और उसके साथ साथ किस प्रकार से, तो हमने देखा था कि तीन बातें हैं जो सप्ताह के पहले दिन की जाती हैं। पहली बात, सप्ताह का पहला दिन आराधना का दिन है। दूसरा, सप्ताह का पहला दिन प्रभु भोज का दिन है। सप्ताह का पहला दिन फिर उसके बाद परमेश्वर को देने का दिन है। हमने उन पदों को देखा था, मैं विस्तार से अब नहीं जाऊंगा। और तब उसके बाद हमने देखा था किस प्रकार से यूतुखुस नाम का एक व्यक्ति है जो संदेश सुन रहा है। रात भर पौलुस वहां प्रचार कर रहा है, रात ज्यादा हो चुकी है, खिड़की पे बैठा हुआ है और शायद सुनते सुनते उसको नींद आ गई, वो गिर गया और मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, मर गया। लेकिन पौलुस को चंगाई प्रदान करता है। जब प्रेरितों काम की पुस्तक पढ़ते हैं तो पहले अध्याय के से 12 अध्याय तक जो घटनाएं पतरस के जीवन के साथ हुई या जो आश्चर्यकर्म पतरस ने किए, वही 13 अध्याय के बाद से हम पौलुस के जीवन में देखते हैं। पौलुस ने भी ऐसे किया, पतरस ने भी द्वारा चंगाई हुई थी और यहां पर भी। आज हम आगे बढ़ना चाहेंगे 13 पद से लेकर 38 पद तक। तो आज जो स्थल है, उस स्थल का मुख्य अगर शीर्षक के कहा जाए, प्रभावशाली सेवक के उत्तम गुण। प्रभावशाली, एक सेवक जो प्रभावशाली है, जो समर्पण के साथ सेवा करता है, उसके जीवन में क्या गुण दिखाई देते हैं। और यहां पर हम पौलुस की सेवा में देखते हैं। हम जानते हैं कि पौलुस यहां से इफिसुस से वापस यरूशलेम जाना चाह रहा है, उसके हृदय में इच्छा है। और 20 अध्याय, अभी वो तीसरी मिशनरी यात्रा में, अभी भी तीसरी सुसमाचार प्रचार यात्रा में। और 21 अध्याय के 16 पद तक हम देखते हैं पौलुस उस सुसमाचार प्रचार यात्रा में है। उसके बाद फिर वो यरूशलेम में जाता है, जिसका कुछ वर्णन आज हम देखेंगे। तब यरूशलेम में उसके साथ क्या घटता है, तो अब उसको 21 अध्याय के उसका 17 पद से हम आगे जब जाएंगे तब देखेंगे पूरी रीति से 28 अध्याय तक क्या कुछ पौलुस के साथ घट रहा है। लेकिन ये 20 अध्याय एक बहुत ही उत्तम अध्याय है। प्रेरित काम के 2 अध्याय एक ऐसे अध्याय है। पहला अध्याय 15 अध्याय है, जहां पर पौलुस और अगुए इकट्ठे होते हैं। करीब 7 एल्डर है प्राचीन में। एल्डर्स में और डीकन्स में फर्क है, ध्यान दीजिएगा। डीकन अलग होते हैं, एल्डर अलग। एल्डर्स के लिए प्राचीन शब्द आया है और डीकन के लिए धर्म सेवक शब्द आया है। एल्डर डीकन नहीं है, डीकन एल्डर नहीं है। कई लोग इसको मिक्स करते हैं, डीकन को बार बार एल्डर कहते हैं, डीकन को बार बार एल्डर कहते हैं। डीकन अलग, उनकी सेवाएं अलग है, उनकी जिम्मेदारी अलग है। और पहले तीसरी अध्याय को जब अध्ययन करेंगे तो सब कुछ उसमें और अधिक मिलता है। हाँ, करैक्टर वही होता है, करैक्टर वही है, मिलते जुलते हैं क्योंकि कलीसिया की सेवा संबंधित है, करैक्टर वही है, लेकिन क्वालिटीज कहना चाहिए, वो सेवा की जो गुण है वो थोड़ा सा अलग है। 15 अध्याय में वहां एक समस्या थी, और समस्या क्या थी कि जो लोग अन्य जाति पृष्ठभूमि से आए रहे थे उनके साथ यहूदी कैसा व्यवहार कर रहे थे। अब वहां पर एक निर्णय लिया था इनके साथ कैसे हमें व्यवहार करना है। 15 अध्याय में वहां पर भी यरूशलेम एक सभा हुई, और यरूशलेम में सारे प्राचीनों को इकट्ठा किया गया, और वहां उन्होंने प्राचीनों को इकट्ठा करके सभा करी और उस सब कुछ का निर्णय लिया गया, और तब वो पत्र सब जगह लोगों को पहुंचा दिए गए कि इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। 15 अध्याय में हम देख चुके हैं। ये अध्याय 20 अध्याय एक और मुख्य अध्याय ये है। अब यहां पर पौलुस सेवकों को बता रहा है, एक सेवक जो सेवक करना चाहता है उसके अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक सेवक जो प्राचीन है, अध्यक्ष है, अध्यक्ष बनकर प्राचीन बनकर एल्डर बनकर सेवक करना चाहता है, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, उनका वो वर्णन करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनका वर्णन करते हुए बताता है कि किस रीति से वो अपने जीवन की साक्षी देता है, अपने जीवन की साक्षी देता है। वो कहता है मेरे जीवन से देख लो, मेरे जीवन से सीख लो, मेरे जीवन से देख लो, मेरे जीवन से सीख लो, और उस तरह से वो साक्षी देता है। तो आइए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, 13 पद से लेकर के जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एक मिलेतुस नाम की एक जगह है, मिलेतुस नाम की जगह है जो एशिया माइनर में है, और लगभग ये है इफिसुस से 30 मील पश्चिम में दूरी पर है, 30 मील इफिसुस से 30 मील, क्योंकि इसके बाद पौलुस को इफिसुस होते हुए यरूशलेम वापस जाना है। क्या करता पौलुस, 13 से 16 तक पौलुस विदाई, अपनी विदाई, जिसके विदाई हो रही है क्योंकि वो जहां से जाना पड़ रहा है, पौलुस की इफिसुस में विदाई की तैयारी हो रही है। अब किस रीति से उसकी विदाई की तैयारी, कि वो वहां से निकल करके अपनी सेवा समाप्त करेगा और चला जाएगा। 17 से 38 पद तक, 20 अध्याय 17 से 38 पद तक वो स्वयं के साक्षी के द्वारा सेवकों के लिए एक निर्देश दे रहा है, स्वयं के साक्षी द्वारा मेरे जीवन से देखो मेरे जीवन। और इसीलिए वो फिलिपियों में भी कहता है जो बातें तुमने देखी हैं, जो तुमने सुनी है, जो तुमने जानी है, उन्हीं का तुम अनुकरण करो, अपने जीवन को बारे में बार बार कहता है पौलुस। बार बार ये कह सकता था तुम मेरे जीवन से देखो, मेरे जीवन सीखो, मेरी सी चाल चलो, पौलुस कह सकता था। शायद आज हम इतना नहीं कह सकते, हम पौलुस के भी जूते के बंद खोलने लायक नहीं, लेकिन फिर भी एक सेवक के अंदर ये इच्छा होनी चाहिए, उसका समर्पण होना चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए कि वो अपने आप को इस प्रकार से तैयार कर सके कि लोग उसके जीवन को देख करके उसको सीख सके। ये सबसे बड़ी बात है। तो जब यहां पर मिलते थे उसमें हुआ है, लिखा हुआ है 14 पद को पढ़ रहा हूं, जब हम में असुस में मिला तो हमने उसे जहाज पर चला लिया और मिले तो उसमें पहुंचे। वहां से चलकर हम दूसरे दिन क्यूस के सामने पहुंचे तथा अगले दिन हम समुद्र पार सामने को पहुंचे, फिर दूसरे दिन मिलेतुस में आए। पौलुस ने यह निश्चय किया था कि इफिसुस में रुके बिना बढ़ जाए उसे एशिया में समय ना बिताना पड़े, क्योंकि वो जल्दी में था, यदि संभव हो तो पिंतेकुस्त के दिन ही यरूशलेम पहुंच जाए, उसके एक अभिलाषा है। अब वो यरूशलेम पहुंचा जाता और यरूशलेम पिंतेकुस्त का जो दिन था, फसह के फसह का जो पर्व मनाया जाता था उसके 50वां दिन जो पिंतेकुस्त का दिन होता था। प्रेरित काम उसके दूसरे अध्याय में भी हम पिंतेकुस्त के दिन के बारे में पाते हैं जब पवित्र आत्मा उन्हें लग गया था, ये फसल के पर्व से माना जाता था। तो चाहता था कि मैं उस समय पर्व मनाया जाता था, वो चाहता था इस पर्व के समय में वो यरूशलेम में पहुंच जाए, और इसलिए थोड़ी जल्दीबाजी में था। तो उसको अच्छा लगा कि उसने कहा अगर मैं इफिसुस में जाऊंगा, इफिसुस माइनर एशिया माइनर का जगह है, कैपिटल है, तो लेकिन उसने सोचा कि ठीक है यहां पर भी सेवक है, वहां पर भी सेवक है, मैं एक जगह सब सेवकों को इकट्ठा कर लूं। और तब उसने इफिसुस से भी सेवकों को वहां पर बुला लिया, लेकिन उसके अंदर ही लिखा हुआ है क्योंकि वो क्या नाम से जल्दी में था, यदि संभव है वो यरूशलेम पहुंच जाए। यरूशलेम उसके हृदय में बसा हुआ था, यरूशलेम उसके हृदय में बसा, उसकी कामना थी कि किस रीति से वो वहां पर पहुंचे। क्यों पौलुस यरूशलेम में इसलिए पहुंचना चाहता था, जैसे मैंने कहा पहली चीज यरूशलेम वो स्थान था जो उसके हृदय में बसा हुआ था, उसके लिए एक विशेष स्थान रखता था क्यों, उसने आरंभिक शिक्षा उसी स्थान पर पाया था। पौलुस का जब आरंभिक जीवन शुरू हुआ था उसने उसी स्थान पर वहां यरूशलेम में भी वो गमलीएल के चरणों में बैठकर उसने 3 साल व्यवस्था को सीखा था, व्यवस्था को सीखा था। यरूशलेम में जब उस व्यवस्था सीखने के बाद वो बहुत ही जोश में बढ़ करके, जोश में बढ़ करके वो कलीसिया को सता रहा था। क्यों, वो इतना उतावला था, वो सोच रहा था मैं व्यवस्था को पूरा कर रहा हूं, व्यवस्था के लिए मैं जोश में भरा हूं। तो उस स्थान पे यरूशलेम में उसने शिक्षा को प्राप्त की है, उसने व्यवस्था को सीखा है, वो उसके हृदय में पूरा स्थान बसा हुआ है। अब वो वहां पर कलीसिया को नहीं देगा क्योंकि सबसे पहले कलीसिया यरूशलेम में स्थापित हुई थी, अब वो यरूशलेम में कलीसिया को देखना नहीं चाहता और इसलिए मसीह को सता रहा है और वो जोश में भरा हुआ। तो उसका यरूशलेम से जो नाता था कूट कूट कर भरा हुआ था, कूट कूट कर भरा हुआ था पूरी रीति से ना के लिए, लेकिन यहीं पर आकर उसने मसीह को सताया था। इसी में रहकर उसने यीशु मसीह के दर्शन को भी प्राप्त किया था, जब वो यरूशलेम से जा रहा था तब उसने दर्शन प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना था, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, और उसने अपने जीवन को वहीं पर उसने कलम से समर्पित किया था। ये यरूशलेम ही था जब नवे अध्याय में आते हैं कि वो 3 साल चला गया वापिस आया तब यरूशलेम की कलीसिया ने उसको संभाला था, यरूशलेम की कलीसिया ने उसको संभाला था प्रभु में आने के बाद। ध्यान दीजिए पौलुस की, पहले 3 साल उसकी सेमिनरी थी, सेमिनरी के बाद उसे प्रभु में आया, फिर उसके बाद 3 साल के लिए कहीं और चला गया, वहां पर उसने कुछ सीखा, फिर वापस यरूशलेम में आया। अब यरूशलेम वासी उसको स्वीकार नहीं कर रहे, स्वीकार नहीं करते। तब उसके बाद बरनबास ने उसको यरूशलेम की कलीसिया से परिचय कराया और तब यरूशलेम के कलीसिया में रह करके नवे अध्याय में उसको उसने स्वीकार किया और कलीसिया के साथ जुड़ा और तब वो कलीसिया के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा, सेवा में आगे बढ़ा। तब यरूशलेम की कलीसिया में होते हुए उसको सेवा दी गई थी सबसे पहले, ताकि जब दुनिया में अकाल पड़ा तो उनको भेजा गया ताकि अकाल में सहायता करे, पैसे ले जाके धन ले जाके उनको मदद करे। 11-12 अध्याय में तो हम देखते हैं कि पौलुस का क्या कितना गहरा नाता यरूशलेम से था और इसलिए वो बार बार यरूशलेम पे पहुंचना चाहता था और इसीलिए उसके मन में हो रहा है कि किस रीति मैं यरूशलेम पहुंच जाऊं, किस रीति मैं यरूशलेम पहुंच जाऊं, किस रीति मैं यरूशलेम पहुंच जाऊं, क्योंकि सारी चीज उसके जीवन में थी। मेरे प्रिय सच है, जब हमारे जीवन में प्रभु सच्चाई के साथ कार्य करता है, कार्य करता है, हम किसी को मूर्ति नहीं बनाते लेकिन हम उन सेवकों का, उन लोगों का, उन स्थानों का आदर सत्कार करते, यह है। पूजा नहीं करते लेकिन तिरस्कृत नहीं करते, दोनों चीज को ध्यान है, पूजा नहीं करते उनको सब कुछ नहीं मानते हाँ, लेकिन हमें समझना है वचन की सच्चाई को। तो यहां पर हम देख रहे हैं अब ये, क्योंकि इसीलिए उसने रोमियो में लिखा, रोमियो में क्या कहता है देखिए, एक दो पदों को मैं दिखाना चाहता हूं। कारण क्या था उसका, केवल इसलिए नहीं कि वो वहां जाकर के इंजॉय करे केवल, ये नहीं 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 इसका कारण ये नहीं था, उसका कारण कुछ और था, क्यों वहां जाना चाहता था। रोमियो उसका 10 अध्याय में, रोमियो 10 अध्याय उसका 1-3 पद, भाइयों मेरी आर्थिक अभिलाषा और परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, ये उसकी अभिलाषा थी। उनके लिए मेरी साक्षी है कि उनमें परमेश्वर के लिए धुन तो है परंतु ज्ञान नहीं, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता को ना जानते हुए वे अपनी धार्मिकता की स्थापना करने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं किया, क्योंकि प्रत्येक विश्वासी के निमित्त मसीह की धार्मिकता प्रति व्यवस्था का अंत है। अब क्या चाह रहा है, वो इसलिए चाह रहा है कि ताकि यरूशलेम में जो यहूदी है उनको सुषमाचार का सही बोध हो सके, सुषमाचार को सही रीति जान सके। नवे अध्याय के पहले पद में क्या कहता है, नवे अध्याय के पहले पद में अभी वो कहता है, मैं मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरा विवेक पवित्र आत्मा की साक्षी देता है, मैं अत्यंत दुखी और मेरा हृदय निरंतर शोकित रहता है। क्यों शायद, क्योंकि ये अपने आप को इसराइल भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन ये जिस रीति प्रभु को जानना चाहिए प्रभु को नहीं आते। तो उसके अंदर यरूशलेम के वासियों के लिए बोझ है कि वो सुषमाचार को सुन सके और सुषमाचार को सुन करके वे प्रभु में आ सके। क्या आपको अपने गांव के लिए, अपने नगर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए बोझ है? मैं कई बार बोलता हूं परमेश्वर के वचन से, कई बार हम गांव से जब निकल जाते हैं, प्रभु को पा लिया हमने, हम इतने बड़े साहब बन जाते हैं, फिर हमें गांव के मतलब नहीं रहता, हम तो जब जाएंगे तो बड़े बाबू बनकर जाएंगे, कोई जाने पाए, किसी साथ सुसमाचार नहीं बांटना, किसी साथ पद प्रार्थना नहीं करना, हमारे अंदर है ही नहीं वो बोझ कि हमारे गांव के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे जिस स्थान से हम निकल के आए वे भी बच जाएं। एस्तर को क्या कहा था, एस्तर को मर्दकै ने क्या कहा था जब वो राजा के महल में पहुंच गई, उसने कहा था, मर्दकै ने कहा था, और वो जब यहूदी लोग को नाश होने वाला था तो मर्दकै ने एस्तर से कहा, एस्तर तू मत ध्यान रख, होता है तू वहां पर महल में पहुंच गई, और अगर तू अपना केवल ध्यान रखेगी और यहूदी जिनके ऊपर आज मौत का साया छाया हुआ है, तू सावधान है, तू नहीं जानती परमेश्वर, अगर तू कुछ नहीं करेगी तो परमेश्वर अपना उपाय कर लेगा, परमेश्वर को उनको बचाना, परमेश्वर तुझके द्वारा दूसरे द्वारा बचा लेगा, दूसरे बार क्या कहना चाह रहा है, तुझे अपने लोगों के लिए बोझ होना चाहिए। यहां पर हम देखते हैं उसको अपने लोगों के लिए बोझ था, कितना अधिक आप अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हैं, कितना अधिक मौका मिलता है उनको सच वचन देते हैं, कितना अधिक आप उस स्थान पर जाने की तैयार रहते हैं जिस गांव से आप निकल कर आए कि आप किसी को सुसमाचार दें और वे प्रभु में आ जाएं, वो प्रभु में आ जाए, ये सच्चाई है मेरे प्रियो। हम बढ़ गए, हम बन गए, हम बच गए, हम सफल गए, दूसरा नरक में जाए कोई बात नहीं, मेरे से परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा, मुझे और आपको इस बात के सचेत रहना है। तो मेरे प्रियो यहां पर हम दे, तो ये कारण था कि वो यरूशलेम में वापस जाना चाहता था। उसके कहता है मेरी आरती का अभिलाषा यह है कि उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि वो उद्धार प्राप्त करें, मैं प्रार्थना करता हूं। यहां रह करके अपनी यात्रा में भी वो यरूशलेम वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, मेरे प्रिय अपने परिवारों के लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए, आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना ना छोड़िए। सैमुएल कहता है ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ करके परमेश्वर दृष्टि में पाप करो, बचाना प्रभु काम है, शायद एक जन आपके घर में बच जाए, शायद कोई एक जन उद्धार पा ले, ये बोझ को अपने जीवन में ले लीजिए। तब आगे चल करके हम पाते हैं 17 पद से तब दूसरी बात को पाते हैं, पौलुस द्वारा अब विदाई के संदेश की किस प्रकार से वो अनोखा संदेश दे रहा है। उसने बुला लिया, 17 पद में लिखा है, उसने मिलितुस में इफिसुस को संदेश भेजकर कलीसिया के प्राचीन को अपने पास बुलवाया। अब वहां बुलवा लिया, कहा ठीक है इफिसुस में जितने भी प्राचीन है, अब कई कलीसिया स्थापित हो चुकी थी, कई कलीसिया स्थापित हो चुकी थी, बढ़ता जाता सुसमाचार फैलता था, उनको बुला लाओ, उनसे मैं जा रहा हूं, मैं यहां से अब कुछ कर रहा हूं, मैं यरूशलेम वापस जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले कुछ मैं बता के जाना चाहता हूं, कैसे सेवा करनी है, क्या सेवा करनी है, किस रीति तुमका जीवन होना है, वो ये कहना चाह रहा है। तुम सब जानते हो कि पहले दिन से, पहली बात 18 से लेकर के 21 पद तक हम उसके जीवन की बातों को देखते हैं। अब ये तीसरा संदेश है जो पौलुस के द्वारा है, दो संदेश जो पौलुस ने दिए पहले, प्रथम संदेश 13 अध्याय के 16 से 41 पद तक उसने इसराइलियों को दिया था, उसने इसराइलियों को दिया, उन यहूदियों को, कि किस प्रकार से उन्हें विश्वास करके प्रभु में आना है। दूसरा संदेश किस प्रकार, 17 अध्याय 22 से लेकर 31 पद तक दूसरा संदेश उसने अन्य जातियों को दिया था, अन्य जाति 17 अध्याय में हम देखते जब वो एथेन में गया था, अन्य जातियों को दिया था, किस तरीके से वे प्रभु में, तुम किस तरीके से अपने परमेश्वर जीवित परमेश्वर के छोड़ करके कैसे तुम ईश्वर को देख रहे हो, क्या कर रहे हो, इस बात को दिया था। तब ये तीसरा संदेश है जो 17 पद से लेकर 38 पद तक आगे चल के तब हम देखते हैं। अब ये संदेश कलीसिया के प्राचीनों के लिए, मैंने बताया कि किस रीति से इतनी दूरी वो था। अब 18 से लेकर 21 तक वो क्या कह रहा है, वो स्वयं की साक्षी या स्वयं की सेवा का वर्णन कर रहा है, प्रभावशाली अगुए के गुण। मैंने कहा था आज का मुख्य विषय प्रभावशाली अगुए गुण, पहला क्या कहना चाह रहा है, वो क्या कह रहा है 18 पद से लेकर 21 तक, और जब वे उसके पास आए तो उसने उनसे कहा तुम स्वयं जानते हो कि पहले दिन से ही मैंने एशिया में पैर रखे, किस प्रकार मैं तुम्हारे साथ सब समय रहा, अर्थात किस प्रकार बड़ी दीनता के साथ आंसू बहा बहाकर और उन परीक्षाओं में भी जो यहूदियों के शरण में के कारण थी आ पड़ी थी प्रभु की सेवा करता रहा। तो पहले 18 पद से लेकर 21 तक वो स्वयं की साक्षी दे रहा है, 22 से लेकर 27 पद तक कार्यकर्तियों की परिस्थिति का वर्णन कर रहा है, किस परिस्थिति में मैंने सेवा की है और तुम्हें कैसे करना है, और तब उसके बाद वो शिष्यों को प्रेरितों को सिखा रहा है कैसे तुम्हें उनके साथ सेवा करनी चाहिए। तब आगे चलकर आप देखते हैं क्या कह रहा है 18 पद से। पौलुस स्वयं की सेवा को क्या विवरण कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रथम गुण, एक सेवक का प्रथम गुण, एक सेवक का प्रथम गुण नम्रता, नम्रता। एक प्रथम का सेवक का सबसे गुण नम्रता। वो कह रहा आंसू बहावक, एक बोझ, एक दर्शन, एक पीड़ा, आंसू बहाकर परीक्षा में यहूदियों के शरण के कारण जो मुझ पर आ पड़ा। किस तरीके से? उसके लिए आसान नहीं था सेवा करना, हर जगह उसका विरोध था, भीतर से भी बाहर से भी। कुछ थे जो यहूदी लोग प्रभु में आ गए थे, अब यहूदी लोग आने के बाद भी, मसीह में आने के बाद भी उसकी प्रेरिताई पे उंगली चढ़ा रहे थे, उंगली उठा रहे थे। इसीलिए उसने क्या नाम से पहले कुरिन्थियों की पत्री को लिखा, गलतियों की पत्री को लिखा, इन पत्रियों में उसने समझाने का प्रयास किया। ये सब कुछ हम देखते हैं किस प्रकार से ये सब कर रहे। क्या कह रहा है? आंसू क्यों आ रहा है? आंसू बोझ था उसके लिए, आत्मा बच जाए, लोग सुसमाचार को सच्चाई से जाने, लोग सुसमाचार पर विश्वास कर सके, लोग सुसमाचार को ग्रहण कर सके। सब कुछ लोग सुनने के लिए तैयार थे, सब कुछ ग्रहण करने तैयार थे, लेकिन सुसमाचार को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, ग्रहण करने तैयार नहीं थे। आज भी यही स्थिति है। आज आप हीलिंग मीटिंग करिए, पूरी भीड़ भीड़ लग जाएगी, क्या ये भैया फलाने आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी चंगाई मीटिंग होगी, भीड़ जगह नहीं रहेगी। लेकिन कहिए आज सुसमाचार की मीटिंग है, शाम को सुसमाचार की सभा है, कितने लोग आएंगे वचन सुनने के लिए? नहीं आएंगे लोग, वचन से प्यार नहीं करते। लेकिन वचन जीवन में आना है, अगर वचन नहीं तो कुछ नहीं। मेरे और आपके अंदर वचन की रुचि नहीं, कुछ नहीं। अगर हम कलीसिया में प्राचीन है, सेवक है, प्राचीन से बात कर रहा है, अगर हम प्राचीन है, हमारा कितना अधिक परमेश्वर के वचन से रुचि है। हम बहुत व्यस्त है, हमारे पास टाइम नहीं पढ़ने के लिए, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं, बाइबल पढ़ने के टाइम नहीं, डिवोशन करने टाइम नहीं, लोगों के साथ बैठने टाइम नहीं, परिवार के साथ बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं, पति के साथ बाइबल पढ़ने टाइम नहीं, हमारे परमेश्वर वचन हमारे हृदय में ही नहीं। तो कहां से बोझ आएगा? बोझ कौन देगा? परमेश्वर का वचन देगा, वचन देगा। जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, उसके परमेश्वर की योजनाओं को देखते हैं, योजनाओं को समझते हैं, सुनते हैं, तब हमें मालूम चलता है हमें करना क्या है, तब हमें मालूम चलता है कि हमें करना क्या है, और तब उसके अनुसार हम और अधिक आगे बढ़ करके प्रभु काम में आगे बढ़ते हैं। आंसू बहाकर कह रहा है बड़ी दीनता से, दीनता, चाहे लोग तिरस्कार कर रहे हैं, चाहे लोग अपमान कर रहे हैं, चाहे लोग कुछ और कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर बोझ था सुसमाचार प्रचार का, उसके अंदर सुसमाचार प्रचार का बोझ था। कितने गवाहों को हम देखते हैं, कितने गवाह आज हम जब लोगों के जीवनियों को पढ़ते हैं, बायोग्राफी को पढ़ते हैं, सुसमाचार पर साउथ अफ्रीका में कैसे सुसमाचार पहुंच गया, हमारे देश में, अगर नागालैंड की हिस्ट्री आप सुने, आज से 200 साल पहले जो सुसमाचार पहुंचा, कैसे सुसमाचार पहुंचा, नागालैंड की हिस्ट्री बताती है कि वह पहले 200 साल पहले सुसमाचार था नहीं, क्या इसकी दशा थी, और जब सुसमाचार आया तो उन लोगों ने कितना सतावनी का सामना करा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज उसी प्रांत को परमेश्वर ने कैसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है, आज स्थिति बदली हुई है। ऐसी कहानी है मेरे प्रियो, जहां कहीं सुसमाचार किया है, जब भी सुसमाचार किया वहां लोगों को कष्ट उठाना पड़ा, आंसू बहाने पड़े, लेकिन कब हुआ? वो सबको सहने तैयार थे, दीन थे, नम्र थे, सब झुक कर सहने के लिए तैयार थे। ये हुआ, कह रहा है उन परीक्षाओं में भी, परीक्षाओं में कौन से परीक्षा, कैसी परीक्षा, जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी। यहूदी लोग बार बार षड्यंत्र रखते थे, कहीं दोष लगाने द्वारा, कहीं नीचा दिखाने द्वारा, कहीं उसको बदनाम करने द्वारा, कहीं झुंड में लोगों को इकट्ठा करके उसके विरोध में खड़ा करने द्वारा, कितने लोग थे। और ये बहुत सरल है, किसी के भी विरोध में लोगों को खड़ा करना बहुत सरल है, सच्चाई को छिपाना बहुत सरल है, कई बार लोग सच्चाई को जानना नहीं चाहते। मेरे प्रिय आज भी वही स्थिति वही है सुसमाचार प्रचार में, गांव में, देहातों में। प्रभु धन्यवाद, प्रभु हमें उस परिस्थिति में लेकर गया है। हम 18 साल 20 साल हम बाराबंकी में थे, मालूम है किस प्रकार से हमने वहां पर जब कैसे कैसे षड्यंत्र को हमने सामना किया, किस प्रकार से लोगों के विद्रोह का सामना करा, भीतर से भी बाहर से भी परमेश्वर ने हमारी सहायता की, किस रीति से। लेकिन वो ये कह रहा है कि हमने ऐसे किया है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक दर्शन था, उसके अंदर एक बोझ था, प्रभु की हर स्थिति में प्रभु की वो सेवा करता रहा, रुका नहीं, उसको कोई रोक नहीं सका। तब आगे चल करके दूसरा गुण का वो कह रहा है, मैं प्रभु की सेवा करता रहा और मैं किस प्रकार से तुम्हारे लाभ के लिए कोई भी बात बताने से ना झिझका, ना झिझका। और सबके सामने घर घर जाकर उपदेश देता रहा। दो चीजें, कोई बात बताने से ना जिसका ये प्रचार संबंधित है। पौलुस सुसमाचार प्रचार खुला के खुलासे के साथ करता था, पौलुस शिक्षा को खुलासे के साथ देता था। सुसमाचार प्रचार जो है मनुष्य को हिलाता है, मनुष्य को जांचता है, परखने में मदद करता है। सुसमाचार बताता है मनुष्य पापी है, आप पापी हैं, मैं पापी हूं, और जो प्राणी ने पाप किया वो मर जाएगा, निश्चय मर जाएगा। वचन ही बोलता था सुसमाचार स्पष्ट रूप से, जो प्राणी पाप करेगा निश्चय मर जाएगा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सुसमाचार आराम से इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य पापी है और मनुष्य को एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, और वो उद्धारकर्ता एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है, जो इस संसार में मनुष्य बनकर आया। उसने क्रूस पर वेदना को सहा, पीड़ा को सहा, यातना को सहा, और मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके पापों को, गुनाहों को लेकर वो क्रूस पर बलिदान हो गया, वो मारा गया, गाड़ा गया। और सुसमाचार ये भी बताता है प्रभु यीशु मसीह जी उठा, उसने मृत्यु को पराजित किया। सुसमाचार ये भी बताता है प्रभु यीशु मसीह न केवल जी उठा, लेकिन आज वो सिंहासन पर विराजमान है और वो फिर से आएगा ताकि मुझे और आपको ले जाए। जो जिन्होंने उसके सुसमाचार का तिरस्कार किया है उनको दंड दे, जिन्होंने स्वीकार किया है वो अनकाल तक उसके साथ रहने पाए। ये सुसमाचार उसने पौलुस से बार बार, हम प्रेरित काम की पुस्तक में पाते हैं, वो कह रहा मैं बिना झिझकचाहट के खुले रूप में निर्दय कहता के साथ सच में मैंने उसका प्रचार किया, और मेरे प्रिय जरूरी है। यिर्मयाह कहता है कि अगर हम उसके पाप का बारे में वर्णन ना करें तो परमेश्वर उसका लेखा हमसे लेगा। और एक पुलपिट की सेवा यह है कि हमें सच्चाई और खराई से उस बात को बताना है कि अगर आप पापी हैं तो आप नरक में जा रहे हैं। जब तक आप मन ना फिराए, पश्चाताप ना करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार ना करें, पापों की क्षमा ना मांगे, उसको अपना जीवन का स्वामी ना स्वीकार करें, अपने जीवन को पूरी रीति से उसके हाथों में ना दें, और केवल सुसमाचार सुनकर विश्वास नहीं करना है लेकिन पवित्रता में, धार्मिकता में जीवन व्यतीत करना है। सुसमाचार तो स्वीकार कर लिया, फिर भी वही पुराने जीवन व्यतीत करें, झूठ है, छल है, धोखा है, घूस है, ये सब कुछ है, वही जीवन व्यतीत कर क्या फायदा है? आपने के जीवन में सुसमाचार का कारण ही, सुसमाचार परिवर्तित करता है स्वभाव को, जीवन को, मन को, मस्तिष्क को, विचारों को, सब कुछ को परिवर्तित करता है, पाप को पाप से सावधान करता है। यह पौलुस कहता मैं उसमें जिसका नहीं, तब दूसरे कहता मैंने शिक्षा दी। क्या शिक्षा क्या करती है? शिक्षा बिल्ड करती है, निर्माण करती है, हमारे विश्वास का निर्माण करती है, हमारे आत्मिक जीवन का निर्माण करती है, हमें और अधिक मजबूत बनाती है, हम बालक के समान धीरे 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 करके बढ़ते चले जाते हैं। यह शिक्षा की जरूरत है, इसीलिए हर कलीसिया में, खास से सियोन से संबंधित जितनी कलीसिया, विश्वासी जितनी कलीसिया, यही कारण है कि बुधवार को बाइबल स्टडी होती है। बाइबल स्टडी का क्या कारण है? बाइबल स्टडी इसीलिए इसको कही जाती है बाइबल स्टडी, कि हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, बाइबल अध्ययन के द्वारा हम विश्वास में और अधिक परिपक्व हो रहे हैं, हम वचन को और अधिक गहन रीति से जान रहे हैं, शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, वो शिक्षा का कारण होती है, और इसलिए हमें लगे रहना है। और पौलुस कहता है मैंने बड़े व्रत के साथ इसको करा है, उसका एक समर्पण था, कहता है इस रीति से, ये उसका गुण। तो दूसरा गुण है एक सेवक का, वो सुसमाचार को खराई के साथ प्रचार करेगा, शिक्षा को सच्चाई के साथ देगा, ताकि लोग प्रभु में आ सके और प्रभु में बढ़ सके, लोग प्रभु में आ सके, लोग प्रभु बढ़ सके। तीसरी बात वो कहता है मैं दृढ़ता पूर्वक, कहता है इसी इसमें जाकर करता रहा, मैंने दृढ़ता पूर्वक पूरी रीति से इस परमेश्वर के वचन को तुम्हारे सामने रखा है। 21 पद में यूनानी दोनों को दृढ़ता पूर्वक साक्षी देता रहा, परमेश्वर की ओर मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। दृढ़ता पूर्वक एक सच्चा सेवक न केवल सुसमाचार प्रचार करेगा, शुद्ध और सही सुसमाचार, लेकिन यह आपके साथ दृढ़ता के साथ, उसको डर नहीं रहेगा लोग क्या कहेंगे। आप प्रचार करने गए, अरे अगर नहीं देंगे तो ऐसा करेंगे, पता नहीं कैसे करेंगे। एक और प्रभु की दया से परमेश्वर कई जगह जाने का मौका देता रहा मुझे और देता है। एक कॉन्फ्रेंस में गया जहां मुझे प्रचार करना था, बहुत लोग थे वहां, मैंने उस कुछ बातों को देखा, अच्छी नहीं थी, वचन के अनुसार नहीं थी, मुझे बहुत दुख हुआ। उसी के बाद मुझे प्रचार करना था, उसके बाद मुझे प्रचार, मैंने प्रचार करते पहले मैंने कहा, मैंने कहा मैं अपना टिकट बुक करा कर आया हूं, मुझे वापस आना, मुझे कोई जरूरत, मैं वैसे ही वापस चला जाऊंगा, लेकिन आपने जो करा यहां गलत करा, और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की दया से मैंने दृढ़ता से उन लोगों को बोला है। मैंने कहा ये आपने कलीसिया यहां पर परमेश्वर के नाम का मखौल उड़ाया है। दूसरे दिन मैं गेस्ट रूम में रुका था, एक बहन आई एमपी की, मिस्टर रमन मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो मुख्यमंत्री की जो देखभाल करने के लिए स्पेशल नर्सिंग टीम होती है उसकी टीम है, वो सुबह सुबह आई, कह लेंगे पादरी साहब अपना कार्ड दिखाने लगे और कह लेंगे मेरे दो जवान बच्चे प्रभु में बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं, मैं उस टीम की मेंबर हूं, मैं उनके साथ रहती हूं, उनकी देखभाल करती हूं, लेकिन मेरे दो बच्चे विश्वास में बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, पर जो कल आपने कहा उसी गड़बड़ी के कारण उनका दोनों का विश्वास बह गया, वह संसार में चले गए और मैं रोती हूं अपने बच्चों का, और जो कह रही थी तो वो रो रही थी आंखों में आंसू, कोई दृढ़ता से बोले आना नहीं। मेरे प्रिय आज कितनी ऐसे पुलपिट ऐसे है जो इस तरह से इस्तेमाल नहीं होते, हमें परमेश्वर के वचन को दृढ़ता के साथ, प्रेम के साथ, सच्चाई के साथ, लेकिन दृढ़ता के साथ, हम चोरी नहीं चलाएंगे, भाले नहीं चलाएंगे, लेकिन सच्चाई को प्रेम के साथ प्रकट भी करेंगे, दृढ़ता के साथ रखेंगे, इसको भी हमें ध्यान रखना। सच है यह है, कह रहा दृढ़ता के साथ मैंने शक्ति दी, क्या कहा क्या शक्ति, मन फिराओ, मेरे पे मन फिराना, ठीक है हमने 20 साल पहले मन फिरा लिया, हम प्रभु में आ गए, क्या आज मन फिराने की आवश्यकता है, क्या आज कोई आपके जीवन में ऐसी बात है, कोई रुकावट है, कोई पाप है, कोई बुरी आदत है, कोई ऐसी चीज जिसे मन फिराना है, प्रभु के साथ चलने के बाद भी आपके आपको मन फिराने की जरूरत है, विश्वास करो प्रभु पर, विश्वास करो, क्या मतलब विश्वास, विश्वास विश्वास केवल मुंह से बोलने से नहीं, विश्वास जीवन से प्रदर्शित होता है, कार्य से प्रदर्शित होता है, व्यवहार से प्रदर्शित, परमेश्वर से विश्वास को चाहते जो हमारे जीवन में है, हमारे एक्शन में, हमारे चीज में, विश्वास करते फिर कोई ना कोई क्वेश्चन आया था सामने, विश्वास करें, कहता है, कह रहा है किस रीति से, तब आगे चल करके 23 पद से आगे चल के 22 पद से लेकर 24 पद तक फिर कुछ कहता है, बहुत ही सुंदर, एक प्रभु का सेवक किस प्रकार से उसके आत्मा में संवेदनशीलता पाई जाती है, आत्मा में संवेदनशील, उसकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ी रहती है, क्या कह रहा है वो, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलम को जाता हूं और वहां ना जाने मुझ पर क्या क्या बीतेगा, परमेश्वर की आत्मा ने उसको बता दिया था तुम पर क्या होगा, आने वाले दिन में क्या होगा बता दिया था, क्योंकि वो आत्मा के साथ इस तरह जुड़ा था, वो जानता था यरूशलम जाऊंगा क्या होगा, और जब हम आगे जाएंगे किस अध्याय के 17 पद से हम देखेंगे आगे बढ़ेंगे, जैसे वो यरूशलम पहुंचता है उसके बाद उसको क्या सामना करना पड़ता है, सही बात है, कहता है केवल ये कि पवित्र आत्मा प्रत्येक नगर में मुझसे गंभीरता पूर्वक गवाही देकर कहता है, पवित्र आत्मा प्रत्येक नगर में मुझसे गंभीरता पूर्वक गवाही देकर कहता है कि बंधन और क्लेश तेरी प्रतीक्षा में है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में है, पवित्र आत्मा उसके जीवन को चला रहा है, पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है, जब पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है तो न केवल उसको वो सतावनी दिखाई दे रही है लेकिन उसको अपना जीवन भी दिखाई दे रहा है, उसको सेवा का जीवन दिखाई दे रहा है, उसको पवित्रता का जीवन दिखाई दे रहा है, उसको समर्पण का जीवन दिखाई दे रहा है, उसको सच्चाई का जीवन दिखाई दे रहा है, उसको खराई का जीवन दिखाई दे रहा है, वो देख रहा है। मेरे प्रिय हम कितना अधिक पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे निर्णयों में, हमारे विचारों में, हमारी दैनिक में हम क्या करते हैं, किस तरीके से, 19 अध्याय के किस पद में वो इस तरह कहता है, 19 अध्याय के 21 पद में कहता है, जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने अपनी आत्मा में मसदुनिया और अख्या से होते हुए यरूशलम को जाने का संकल्प किया, अपनी आत्मा किस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन को नियंत्रित कर रहा, कितनी बार हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने पवित्र आत्मा द्वारा मुझे चला, प्रभु अपने पवित्र आत्मा द्वारा मेरा निरंतर कर, पवित्र आत्मा द्वारा मुझे बुद्धि दे, पवित्र आत्मा द्वारा मुझे समझ दे, हम जो सोचते वो करना मांगते, अच्छा ये अच्छा ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अच्छा आज ये करेंगे तो 5 साल बाद इसका ऐसा रिजल्ट होगा, अच्छा आज ये करेंगे तो 2 साल बाद इसका रिजल्ट होगा, हम ये देंगे, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, वो हम नहीं देते, वो हमें दे रहे, कह रहे हैं पौलुस आत्मा के द्वारा संकल्प लेता था, एक आत्मिक अगुए का गुण वो परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनने वाला होता है, प्राय हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के प्रति गंभीर नहीं होते, गंभीर नहीं होते, हमने पवित्र आत्मा करते हैं, या तो बोलेंगे हालेलुया हालेलुया तो पवित्र आत्मा है, पर किस रीति पवित्र आत्मा कितना अधिक हमें कायल करता है, 2 प्रतिदिन जब हमारा जीवन परमेश्वर के साथ सही नहीं है, वचन सही नहीं है, सही रीति हम चल नहीं रहे, जब हम प्रभु को जो आदर करना चाहिए देने के द्वारा नहीं कर रहे हैं, क्या पवित्र आत्मा काटता है? तब तो बहाने लगाते हैं, अरे ये हो गया, वो हो गया, फलाने हो गया। पवित्र आत्मा काटता है आपको मेरे प्रियो। अगर पवित्र आत्मा सच्चाई के साथ आपके जीवन में काम करेगा, आप परमेश्वर के वचन का सम्मान करेंगे। आप लोग ही कम सुनेंगे, परमेश्वर के वचन की ज्यादा सुनेंगे। हम लोगों की ज्यादा सुन के निर्णय लेते हैं, वो पवित्र आत्मा काम नहीं। लोग खुद बहकते हैं, दूसरों को बहकाते हैं, खुद भरमाते हैं, भरमाए जाते हैं, दूसरों को भरमाए। परमेश्वर के वचन के पास है, पवित्र आत्मा दो, प्रार्थना कीजिए पवित्र आत्मा आपके जीवन को चलाए, वो संचालित करे, वो आपको कायलता दे, वो आपको पश्चाताप का जीवन दे, वो आपको पवित्र बनाए, वो आपको गलती दिखाए, वो आपको सच्चाई के साथ चले, वो परिवार को संभाले। पवित्र आत्मा परिवार को संचालित करे, बच्चों को संचालित करे, ये देखना है पवित्र आत्मा द्वारा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सेवा बहुत बड़ी सेवा है, है ना। कई विश्वासी या तो कुछ लोग हैं बिल्कुल एक्सट्रीम चले जाते हैं, कुछ लोग हैं बिल्कुल उसको याद नहीं रखते। मेरे बिना पवित्र आत्मा के जीवन मेरा और आपका जीवन सुना हो जाएगा। मुझे बार बार उसके पास आना, बार बार परमेश्वर से प्रार्थना, प्रभु अपने पवित्र आत्मा द्वारा मेरे जीवन को संचालित कीजिए, ये कह रहा है। स्थान जहां हमें जाना है, लोग जिनसे हमें मिलना है, पत्र जो हमें लिखने हैं, कार्य जो हमें करने हैं, हम सामान्य विश्वास के साथ सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे जीवन में नित्य प्रतिनित्य पवित्र आत्मा के नियंत्रण होना चाहिए, होना है, और ये संवेदनशीलता होनी आवश्यक है बहुत जरूरी, ताकि वो मुझे बोझ दे, कायल करें। मैंने भी परिवार के बारे में या गांव के बारे में पड़ोसियों के बारे में बताया, अगर पवित्र आत्मा नहीं बोझ देगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें देखना है मेरे। सो यहां तीसरे गुण को देखते हैं, चौथे गुण को, कि एक सेवक को संचालित करने वाला उसका पवित्र आत्मा संचालित करता है। ना केवल ये कहता है, कह रहा है आगे चल के, मैं पूर्ण अपने प्राण को किसी प्रकार से अपने प्रिय, 24 पद समझ, यदि समझू तो मेरे, इसलिए कि अपनी देह अपनी दौड़ को और उस सेवा को जो मुझे प्रभु यीशु मसीह में मिली पूर्ण करूं, अर्थात मैं परमेश्वर के उस अनुग्रह को के सुसमाचार की गंभीरता पूर्वक साक्षी दूं। गंभीरता पूर्वक, एक सेवक का जीवन गंभीर जीवन होता है, एक सेवक का जीवन गंभीर जीवन। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास के नहीं, परिस्थिति को देख के बात करने वाला नहीं है, लोगों के बहकाए वाला जीवन नहीं, परमेश्वर के वचन को प्रभुता में लेके चलने वाला जीवन, गंभीर जीवन। कितना गंभीर हमारा जीवन, मसीह जीवन। हमें अपने काम के लिए हम गंभीर है, बहुत अच्छी बात है, व्यवसाय के लिए गंभीर है, बहुत अच्छी बात है, नौकरी के लिए गंभीर है, बहुत अच्छी बात है, स्कूली बहुत गंभीर है, अच्छी बात है, बच्चों के एग्जाम के लिए गंभीर है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के लिए जरूर होना चाहिए, जरूर है, जरूरी है, बिना उसके काम नहीं चलता। लेकिन ठीक उसी तरह से अपने जीवन के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपनी दौड़ के लिए, मसीह के साथ रहने के लिए, उसके लिए भी गंभीर होना, उतना कि उसके लिए कितना गंभीर है। अगर उसके लिए गंभीर है तो हमारा जीवन का अनुशासन बन जाएगा, हम अनुशासित होकर अपने जीवन को संभालेंगे, जो समय प्रभु को देना प्रभु को देंगे, जो हमें प्रभु के लिए जीना उसको जिएंगे, जो कार्य तक क्यों हम जीवन में गंभीर है। और मेरे प्रियो, हम गंभीर दास बनकर नहीं रहते कि हमारा लंबा सा चेहरा लटका रहेगा, लेकिन हम प्रभु के साथ सच्चाई के साथ गंभीरता से जीवन को व्यतीत करते, हम छल और धोखे का जीवन व्यतीत नहीं करते, हां कि हां, ना कि ना कहेंगे, इसको समझना है मेरे प्रियो, गंभीरता है यह है। तब आगे चल करके इन बातों बात, तब एक और बात कहते 25 पद से लेकर 31 पद तक। अब वो क्या कह, अब सेवकों के बारे में कुछ कह, अभी तक अपने बारे में कह रहा, मैंने अपने जीवन को ऐसा व्यतीत किया, उसके जीवन की साक्षी ये रही है, उसका जीवन, उसके जीवन के गुण ये रहे, वो नम्र था, किस प्रकार से परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जीवन संचालित होता था, उसके हृदय में अपने जगह के लिए बोझ था, पीड़ा थी, किस प्रकार से सुसमाचार को खराई और सच्चाई से वो प्रचार करता था, दृढ़ता से सच्चाई को सबके सामने वो रखता था, चाहे संदेश चाहे कुछ हो, ये सब कुछ था, किस प्रकार से पवित्र आत्मा के प्रति वो संवेदनशील था और पवित्र आत्मा उसके जीवन को चला रहा था, किस प्रकार से। लेकिन अब वो कहता है आगे चल करके 25 पद से, अब उस सेवकों के बारे में कुछ कहता है कि किस रीति से अब मैं तुमको क्या करना चाहिए। अब देखो, तुमने मेरे जीवन को देख लिया, तुमने मेरी सेवा को देख लिया, मैंने तुमने जीवन की सेवा के बारे में तुम्हारे सामने रख दिया यह है। लेकिन अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनके मध्य में परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाता फिरा, मेरा मुंह फिर कभी देखने ना पाओगे। मैं तो यहां जा रहा हूं, मैं क्योंकि यहां से यरूशलम जाऊंगा, और जैसे मैं यरूशलम जाऊंगा मुझे लोग बंधुआ बना लेंगे, फिर मैं दोबारा नहीं आने पाऊंगा। मेरा मुंह तुम देखने भाई। इसलिए आज के दिन मैं तुम्हारे समक्ष गवाही देकर कहता हूं कि सब लोगों के लहू से निर्दोष रहो। मैं सब लोगों के लहू से निर्दोष हूं। क्या कह रहा है, क्यों सब लोगों के, कई सारी बातें वर्णन करता है, पर वो कहता है क्योंकि मैं परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को तुम्हें बताने से ना हिचका। इसलिए अपने और अपने झुंड की 28 पद रखवाली करो, जिसके मध्य पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, एल्डर ठहराया है, प्राचीन ठहराया। अध्यक्ष प्राचीन से ऊपर होता है, हालांकि सब कुछ वही है, लेकिन ये अध्यक्ष जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है खासतौर से वो जो उम्रदार है। अपॉलुस उनसे उम्रदार था, तिमोथियुस सब कुछ वो सारे उनकी उम्र से नीचे थे। आजकल कई सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अध्यक्ष जो है प्राचीनों से ऊपर होते थे, जिनके साथ अन्य प्राचीन जैसे तीतुस था, तिमोथियुस था, ये प्राचीन थे जो पौलुस के नीचे थे। पौलुस उमर में था, उमर में उनको सिखा रहा है, समझा रहा है, इसलिए तो वहां पर कहता है कि वो अपने आप को इसलिए कहता है। तो तीन शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, प्राचीन शब्द इस्तेमाल किया गया है, अध्यक्ष शब्द इस्तेमाल किया गया है, चरवाह इस्तेमाल किया गया है। तीन शब्द इस्तेमाल किया गया ये पूरे इस अध्याय में, और तीनों को समझना है। और काम तीनों का एक ही है, काम तीनों का एक है। अध्यक्ष का काम एक है, चरवाहे काम वही है, और क्या नाम प्राचीन का काम भी, देखभाल करना, शिक्षा देना, संभालना, आत्मों को जीतना, बढ़ाना। हाँ, अध्यक्ष जो है वो प्राचीनों को सिखाता है, प्राचीन को संभालता है, प्राचीन को अगुवाई करता है, ये करता है जो उसके नीचे है। तो ये है, परमेश्वर उस कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से कर दिया। क्यों, वो कलीसिया किसकी है? कलीसिया पौलुस की नहीं है, किसी उन कलीसिया रॉली सिंह की नहीं है, किसी और व्यक्ति विशेष की नहीं है। हाँ, हम नाम दे देते हैं, फलाने कलीसिया याद देते हैं, हमें प्रभु ने थोड़ी देर के, मैं आप ही के समान हूं, आप ही के समान, हम सब एक भाई बहन है, पर परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दे करके मुझे एक थोड़ी देर के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया है। अगर जिम्मेदारी दी है कलीसिया को संभालने के लिए, तो ना केवल जिम्मेदारी दी है लेकिन जवाबदेही और बढ़ गई है। मैं हमेशा बोलता हूं जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही बढ़ जाती है। अब मेरे पर जवाबदेही है, हम जो प्राचीन, हम जो एल्डर हैं, हमारे ऊपर जवाबदेही है। अगर कलीसिया में हमने एल्डर बने हैं तो हमारे ऊपर जवाबदेही है, हमें उसे गंभीरता से लेना है, सीखना है, समझना है, जहां नहीं समझ में आती उसको आके पूछना है, समझना है, और सीख करके, सुनकर, समझ करके सही रीति चलना है। परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है और वो कहां सीखना है, इसी कलीसिया के अंदर सीखना है, बाहर के अंदर नहीं। जो कलीसिया के बाहर है उनके अंदर नहीं, वो नहीं सका पाएंगे। इस कलीसिया में ही आके सीखना है, वहीं आके सीखना है, उन्हीं से पूछना है जिनके साथ परमेश्वर ने आपको रखा है, जोड़ा है, उनसे रखेंगे, इसको सीखना है। यहां पर हमें देखना है इस चीज को। तो कहता है कि रखवाली करो जिसको लहू से कर दिया, कीमती है, बहुमूल्य उपाया। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे पास आएंगे और झुंड को ना छोड़ेंगे। ऐसे ध्यान दीजिए, झुंड को तितर बितर कौन करता है, लोगों को कलीसिया से कौन हटाता है, लोगों को कलीसिया से कौन भटकाता है। मुझे और आपको सावधान रहना चाहिए, मुझे अपने आप को बचाना चाहिए। मैं कभी भी, मैं एक पहले कलीसिया में था, 25 साल मैंने वहां सेवा करी, जब मुझे वहां से था मैंने उस कलीसिया को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। मैं वचन को जानता हूं और वचन को सिखाता हूं, अपने स्वार्थ के कारण मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। लोगों ने बहुत कहा मुझे, मैंने उसको नहीं सुना। वचन क्या कहता है, झुंड को इकट्ठा होना सीख। आपने अलग झुंड बनानी ठीक है, अब दूसरे झुंड को मत बिगाड़िए, ये परमेश्वर को वचन नहीं सिखाता स्पष्ट रूप से। और परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो, चाहे आप हो, कहीं भी। कह रहा है कि किस दिन, वो कह रहा है हिसाब, कह रहे हैं ऐसे क्या होगा, वो आएंगे और क्या करेंगे, क्यों। हम कई बार कुछ वचन है समझ नहीं पाते और कई बार वचन को सोचते हैं, अरे प्रचार ऐसा करें, स्वार्थी प्रचार करें, गलत प्रचार करें, कठोर प्रचार करें। नहीं, ये नहीं है, मैं नहीं प्रचार कर रहा हूं, मैं नहीं बोलूं, परमेश्वर का वचन बोलूं। अगर मैं कुछ मिलाऊंगा, कुछ घटाऊंगा, कुछ बढ़ाऊंगा, मैं परमेश्वर सामने अपने ऊपर दोष घटाऊंगा और बढ़ाऊंगा, न्याय घटाऊंगा बढ़ाऊंगा। मैं डरता हूं, मैं कांपता हूं, परमेश्वर के वचन में मैं मिलावट नहीं करता। 40 साल में मैंने दुनिया को बहुत देखा है, कई कलीसियाओं को देखा है, बहुत ही स्थानों को देखा है, प्रभु ने मेरी सहायता की है, जीवन दिया है, अनुभव दिया है, बातों को दिया है, और डरते हुए परमेश्वर के वचन की सेवा करना चाहूंगा। कहता है वो, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद ऐसा होगा और तुम्हारे बीच में से ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। साधन रहो, अपने पीछे खींचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे, सच्ची बातें नहीं करेंगे, मिला जुला के इधर उधर करके। यह है परमेश्वर के, ये पौलुस आज से 2000 साल पहले की बात कह रहा है। कलीसिया जिस समय बनी थी, स्थापित हुई थी, उस समय से कलीसिया इन सारी चीजों को झेल रही है। कोई नई चीज नहीं है, नई चीज नहीं है। मैं लखनऊ में 72 से हूं, 71 में आ गया, और मैंने 71 से लेकर के बहुत कलीसियाओं को, कैसे कौन सी कलीसिया बनी है उनको सबको देखा, इतिहास सामने आके बैठ जाइए, मैं एक एक कलीसिया का इतिहास बता दूंगा। मैंने देखा उनको कैसे क्या और किस रीति, लेकिन उनका परिणाम भी क्या हुआ वो भी हमने देखा, वो भी हम देखा। सावधान रहिए भयभीत, कलीसिया स्थापना करना बहुत अच्छा है, ये जरूरत है। इस लखनऊ में 100 कलीसिया, अच्छी कलीसिया स्थापित हो, प्रभु करे, लेकिन उसका तरीका है, उस तरीके से कार्य करें। और यह कह रहा है, क्या कह रहा है, करेंगे टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो। मैंने 3 वर्ष रात दिन आंसू बहा बहाकर एक एक को समझाना न छोड़ो। 3 वर्ष तक आंसू बहा बहाकर वो कह रहा, तुम सावधान हो, तुम कैसी चरवाही करोगे, तुम्हें देख रहा हूं, कह रहा। तब 32 पद से लेकर के अंत मैं समाप्त करना चाहूंगा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर और उसके, अब वो प्रार्थना के साथ उनको उनके हाथों में, परमेश्वर के हाथों में सौंपा है, क्योंकि जाने वाला है, उसकी इच्छा है कि उसको कुछ बातें सिखाए। पहले उसने अपने जीवन को दिखाया है, अब वो देव जीवन के द्वारा उनको सीखना है कि हाँ ये जीवन है, इस जीवन को हमें फॉलो करना है, इस रीति से हमें सेवा करनी है। उसने कैसे करा, तो वो कह रहा है, कहता है आगे जो करके मैं तुम देगा, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, पवित्र किए गए लोगों के साथ मिराज दे सकता है। मैंने किसी के सोने चांदी या वस्त्रों का लोभ नहीं किया। आपको मालूम है पुराने नियम में, पहला शैमिल में, शैमिल उसके 12 अध्याय में भी 1 से 3 पद तक, जब शैमिल शाऊल से क्रोधित होता है और क्रोधित होकर शाऊल को छोड़ के जाने की तैयार हो जाता है, हम देखते हैं, देखा था मैंने, पढ़ते थे, तो कहता है मैंने किसी से एक गधा भी नहीं लिया, गधे के बच्चों को भी लिया, किसी का सोना चांदी लिया, मैंने जो बचपन से सेवा की है एक सच्चे समर्पण के साथ की है। शाऊल का ये सैमुअल की गवाही थी, मैंने बचपन से लेकर सेवा की है, एक निस्वार्थ करके, बिना स्वार्थ के। पौलुस भी कह रहा है, पौलुस जरूर समाया मुसलमान कलीसिया ने उनकी सेवा करी, सहायता करी, आर्थिक सहयोग किया, करा कलीसिया ने करा। कई जगह पौलुस कहता है, फिलिपी में कहता है, उनको धन्यवाद देता है, फिलिपी कलीसिया के लिए तुमने मेरी चिंता करी, लेकिन उसने मांगा नहीं मुझे दो तब मैं तुम्हारे लिए करूंगा, ऐसा नहीं करा। कलीसिया के लोगों का फर्ज था अपना प्रेम दिखाने का, अपनी सहायता करने का, उन्होंने करा, फिलिपी के कलीसिया ने करा, मैसिदोनी कलीसिया ने करा। आप पहले क्रंथियों में जाइए, फिलिपी में जाइए, और मिले, वो करा पौलुस के लिए, पौलुस से। लेकिन पौलुस ने मांगा नहीं, पौलुस ने छीना नहीं, जबरदस्ती नहीं करी। अभी कोई भाई मेरे पास आया, कहने लगा कि क्या नाम से उनके उनके घर में किसी शादी होनी है, तो उन्होंने किसी पास्टर से संपर्क किया, पास्टर से संपर्क किया तो पास्टर ने कहा हाँ हम शादी देंगे, शादी दे देंगे, कितनी फीस होगी, तो शायद 10 या 15 हजार बताया उसको, यही है भाई बहन, है ना, 10-15 हजार बताइए, ये हाल है। ऐसी सेवा है आज, और मजी बात, उनका लाइसेंस खत्म हो गया तो मेरे को अप्रोच करें, मुझे लाइसेंस दे दीजिए, 10-15 हजार मांग रहे। ऐसी सेवा है, हमें सावधान रहना है, हमें सावधान रहना है, मेरे प्रयोग किस रीति से। लेकिन यहां पौलुस कहता है, कह रहा मैं किसी के चीज का लालच नहीं किया, लोभ नहीं किया, मेरे साथ ही आस्था पूरी की है। वो कह रहा है हाँ आगे चलकर, तुम सब जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरे और मेरे साथियों की खुद काम भी करता था, किस प्रकार से। 35 पद से लेकर, मैंने तुम्हें हर समय ये दिखाया कि तुम भी इसी प्रकार कठिन परिश्रम करते, निर्बलों को संभालो और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखो कि जिसने स्वयं के लेने से देना धन्य है। हम मालूम है ये केवल एकदम से प्रचारक एकदम से पैसे के लिए जोड़ देते, अगर आप पैसा देंगे चर्च में या लोगों को देंगे तो आप धन्य होंगे, और नहीं 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 नहीं, वो कह रहा मैंने तो अपना जीवन दे दिया सेवक ले, दे दिया, वो धन्य था मेरे लिए, मैंने कुछ लिया नहीं है, लेकिन मैंने अपने जीवन को, अपनी सेवा को, सब कुछ को दे दिया, ये मेरे लिए धन्य है। मैंने उस प्रभु पर विश्वास किया है जिसने मुझे सब कुछ दिया है, जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने सब कुछ दिया, स्वास्थ्य दिया, चूंकि उसने मुझे सब कुछ दे दिया है, इसलिए मैंने मैंने अपने आप को पूरी रीति से प्रभु को दे दिया, ये मेरे धन्य की बात है। और यदि तुम भी इसी से अपने आप को दे करके पूरी रीति प्रभु की सेवा सच्चाई के साथ करोगे तो परमेश्वर इस समय धन्य ठहरा जाएगा। इस चीज को हमें समझना है, ये समझना है, कह रहा है। ये कहकर उसने घुटने टेक कर सबके लिए प्रार्थना की और वे फूट फूट कर रहे उसको विदा करा, घुटने टेक कर प्रार्थना करी। मेरे प्रियो कितना सुंदर है 20 अध्याय, पौलुस किस तरह से अपनी विदाई को कर रहा है, लोग उसको देख रहे हैं। हम आज कितने लोगों ने वचन को सुना है, हम जो सेवक हैं कहेंगे यार ये तो प्रचारकों के लिए है, हमारे लिए क्या? नहीं जी, कलीसिया के लिए भी, क्योंकि ना केवल प्रचारक वहां थे लेकिन कलीसिया थी। पहला संदेश जो कलीसिया के और प्रचारकों के लिए था, इससे पहले यहूदियों के लिए था, इसराइलों के लिए था, दूसरा संदेश उससे अन्य जातियों के लिए था, ये तीसरा संदेश कलीसिया के प्राचीनों के लिए और कलीसिया के लोगों के लिए था, ताकि कलीसिया भी जान सके कि सेवा क्या होनी चाहिए और सेवकों को किस प्रकार से उनको देखना है, कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है, किस प्रकार से सेवकों को उनको सम्मान करना है, कैसे उनके साथ विश्वास मनाना है, सुसमाचार का रिस्पॉन्स करना है, प्रत्युत्तर करना है और सुसमाचार के लिए अपने जीवन को देना है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें, हम जहां कहीं भी, जिन्होंने भी आज वचन सुना है, थोड़ी देर के लिए सोचिए मेरा और आपका जीवन कैसा है, क्या वो जीवन में नम्रता है, बोझ है अपने लोगों के लिए, सुसमाचार देने के लिए, सेवा निस्वार्थ है, कठिन परिश्रम है, दृढ़ संकल्पता है, अनुशासन है, सब कुछ परमेश्वर को देने के तैयार है, क्या ये जीवन है? क्या आपने अपने जीवन को दिया है? अगर आपने अपने जीवन को नहीं दिया, आप कुछ नहीं दे सकते। इसीलिए पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, तो अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता बलिदान करके चलाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जैसे तुम परमेश्वर की भली और भांति इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। रोमियो उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद, रोमियो 12 अध्याय, प्रभु सहायता करें। आइए हम प्रार्थना।